सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
आज स्वास्थ्य मंगल के जिस विषय को हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। ऐसा माना जाता है कि मोटापे की वजह से एक नहीं बल्कि कई बीमारियां हो सकती हैं। सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से विश्व के 60% डायबिटीज और हार्ट पेशेंट तो केवल भारत में ही हैं। समाज में जागरूकता की कमी है। जब हम नेत्र रोग, दंत रोग, हृदय रोग आदि के लिए उनके विशेषज्ञों की सलाह और उपचार लेते हैं तो मोटापा जैसे गंभीर रोग के लिए मोटापा रोग विशेषज्ञों की सलाह क्यों नहीं लेते? तो आज हमारे साथ हैं मोटापा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बंजारे, जो सिम्स के फार्माकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए ये फार्माकोलॉजी क्या होता है?
फार्माकोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम MBBS स्टूडेंट को थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 1.5 साल का कोर्स होता है पूरा MBBS का, उनको हम स्पेशली पूरे बेसिक ड्रग मेडिसिन ये सारे उनको स्टडी कराते हैं कि कौन कौन से प्रकार के ड्रग हैं, कैसी एक्टिविटी होती है बॉडी में, कितने प्रकार के डिजीज हैं, वो कैसे एक्शन करेगी सारे ड्रग।
अच्छा, लेकिन आपकी जो दखल है वो खास तौर पर ओबेसिटी पे है।
यस।
तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ओबेसिटी का मतलब क्या है?
ओबेसिटी एक सिंपल वे है जो कि आजकल कॉमन हो गया है। पहले लोगों को ओबेसिटी बोलने से मीनिंग समझ में नहीं आती थी कि ओबेसिटी है क्या चीज। आज अगर किसी को आप बोलते हो ओबेसिटी तो बोलेगा हाँ भाई ये तो मोटापा है।
मोटापा वो स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है।
तो ये जो मोटापा है वो किस हिसाब से आका जाता है? हाइट के हिसाब से या शरीर के किसी हिस्से में फैट जमा होने को मोटापा कहते हैं? आप लोगों की मेडिकल भाषा में ओबेसिटी का क्या अर्थ?
मेडिकल अगर टर्मिनोलॉजी देखा जाए तो बेसिकली हम इसको एक क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं कि ओबेसिटी कौन से ग्रेड में है, नॉर्मल ओबेसिटी हम कब बोलेंगे। तो एक हम BMI रिपोर्ट होती है हमारी, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, उसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि सामने वाले बंदे को ओबेसिटी है कि नहीं है, और है तो वो कौन से ग्रेड में है। अगर किसी भी बंदे का अगर आपको हाइट और वेट पता है तो एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो जब निकालते हैं तो इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, कि आपका मेटाबॉलिक रेट कितना है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर इस रेंज में है तब तो ठीक है, अगर रेंज के बाहर है तो हम ओबेस में हैं। अगर BMI रिपोर्ट जो है बिलो 25 यूनिट है तो पेशेंट को ओबेसिटी नहीं है। अगर जैसी वो 25 से लेकर 29 तक बढ़ता है तो उसको ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। फिर ग्रेड 1 आ जाती है अगर 30 से लेकर 34 तक है, फिर 35 से 39.9 तक जाती है, तब फिर वो ग्रेड 2 में आ जाती है। जो एक्स्ट्रा ओबेसिटी है वो ग्रेटर देन 40, अगर BMI 40 है तो आप समझे सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली और सबसे हाई ओबेस में वो पहुंच चुका है। तो इस तरीके से ये 3-4 क्राइटेरिया है।
मोटापा किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। मोटापा आज के समय में एक बड़ी समस्या बन गया है। आधुनिक जीवन शैली का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मोटापा ही है।
तो कितने हाइट वालों का वजन कितना होना चाहिए उसको हम सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं?
तो जैसे हम अगर अपना हाइट नापते हैं सेंटीमीटर में, जो बेसिकली हमारा हाइट होता है उससे हम जितना भी हमारा वेट है से अपन 100 माइनस करते हैं।
अच्छा।
जैसे मान लीजिए मेरा हाइट है 169, तो मैं अगर उसमें से 100 माइनस करता हूँ तो बचता है 69, तो मेरा वेट 69 तक है तब तो ठीक हूँ मैं, और 65 से भी बहुत कम हो गया तो भी मेरा वेट के अकॉर्डिंग कम है, तो मेरा लगभग 65-70 तक हो तो मैं फिट हूँ।
उससे ज्यादा अगर हुआ, 75 से ऊपर हुआ, उसका मतलब आप ओबेसिटी में शामिल हो।
हाँ, फिर वो क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया था BMI के अकॉर्डिंग फिर डिपेंड करेगा कि कौन से कैटेगरी में है वो।
मोटापे की समस्या दुनिया भर में फैल रही है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2008 में दुनिया के 9.8% पुरुष और 13.8% महिलाएं मोटापे का शिकार थीं, और उनका BMI 30 से अधिक था। अगर इसकी तुलना 1980 के आंकड़ों से करें तो उस समय 4.8% पुरुष और 7.9% महिलाएं मोटापे की शिकार थीं। भारत में भी मोटापा एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। बीते सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में 28% वयस्क पुरुष और 47% वयस्क महिलाएं मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। ये आंकड़ा अब और अधिक बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 5 साल से कम आयु के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपने वजन से अधिक पाए गए हैं, जो कि विश्व के भविष्य के लिए खतरा है।
वो इंसान ओबेस कहलाता है जिसके शरीर का वजन अकॉर्डिंगली ज्यादा है।
हाँ।
और अकॉर्डिंगली कम है तो उसको क्या कहा जाता है?
अकॉर्डिंग अगर कम है तो भी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स ही डिपेंड करेगा उसका, ठीक है। फिर उसमें हार्मोनल भी चेंजेस आ रहे हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि जो बहुत पतले होते हैं वो लोग इतना खाते हैं उसके बावजूद भी उतना डाइजेशन उनका अच्छा पावर होता है। हम लोग सोचते हैं कि इतना खाते हैं उसके बाद भी ओबेस नहीं हो रहे, बट हम क्यों हो रहे हैं? तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे BMI के ऊपर। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो हम ओबेस नहीं होंगे, अगर कम है नहीं हो रहा है तो मेटाबोलाइट नहीं हो रहा है हमारा जो भी हम खा रहे हैं, उसकी वजह से हमको ओबेसिटी होगी।
तो क्या जो लोग बहुत खाते हैं और उसके बाद उनका फैट नहीं बढ़ता है उसको भी कोई बीमारी माना जाता है?
नहीं, उसको नॉर्मल वेट हम बीमारी नहीं मानते क्योंकि उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन ओबेसिटी की वजह से क्या होती है, फैट सेल जब बढ़ती जाती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी वो एक्यूमुलेट करती है, प्रेस करती है, कभी वेसल्स दब गए, अगर वेसल्स में कहीं भी दबाव आ रहा है तो हमारा ब्लड फ्लो डायरेक्टली इसमें इफेक्ट आता है कि ब्लड सर्कुलेशन फिर चेंज हो जाता है।
मोटापे के कई कारण हो सकते हैं, इनमें से प्रमुख हैं ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन। अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन करना भी मोटापे का कारण है। कम व्यायाम करना और स्थिर जीवन यापन मोटापे का प्रमुख कारण है। असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव की वजह से लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं, जो मोटापे का कारण बनता है। शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। बाल्यावस्था और युवावस्था के समय का मोटापा वयस्क होने पर भी रह सकता है।
पहले के जमाने में मोटापे को एक बीमारी नहीं माना जाता था, आज के जमाने में मोटापा एक बीमारी का रूप धारण कर चुकी है। मोटापे में भी पूरे शरीर के मोटापे को ही ओबेसिटी बोला जाता है या शरीर के एक ऑर्गन एक हिस्से में, जैसे किसी का पेट ज्यादा वहां पे फैट जमा हो गया, किसी के थाइस में ज्यादा फैट होता है, तो इसको भी ओबेसिटी में काउंट किया जाता है?
ओबेसिटी तो हम पूरे शरीर का मानते हैं, बट क्या होता है जो हमारा नॉर्मल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा थाई में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया फैट तो वो दिखने में बड़ा बैड लगता है, लोगों के सामने हमें जाने में थोड़ी शर्म फील होती है, तो उसके लिए भी हम एक फैट मीटर होती है जो मिलीमीटर में काउंट करते हैं। अगर हम उसको मीटर से अपन नापेंगे, कैलिपर में अगर हम फैट को मेजर करते हैं, अगर बिलो 20 आती है तब तो नॉर्मल है, अबव 20 जाती है तो ये ग्रेडिंग में उसमें भी स्टार्ट हो जाती है।
मोटापा जो आजकल के जमाने में लोगों को हो रहा है, तो ये क्या सिर्फ लाइफ स्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है या और भी कारण है?
नहीं, बहुत सारे कारण है। लाइफ स्टाइल के साथ साथ जो हमारा अभी काम का बर्डन हो गया, वर्क बर्डन बोलते जिसको, उसकी वजह से भी ओबेसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। AC की वजह से बढ़ती है। पहले हम फैन में सोते थे, गर्मी का एहसास लेते थे, अब ऐसा है कि हम बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो मिडिल क्लास अपर और बात कर रहा हूँ मैं उसकी, तो वो क्या करते हैं, AC ऑन करने के बाद फैन भी ऑन करते हैं, तो उसकी वजह से भी एक जर्नल ने अभी छापा है जस्ट कि अगर हम कंटिन्यूसली AC में हैं, रात में हम तो सोते ही AC ऑन करके, तो उसकी वजह से भी फैट बढ़ते जा रही है बॉडी में।
आजकल के खान पान के कारण मोटापे पे क्या असर होता है?
खान पान आजकल का तो बहुत ही अजीब सा हो गया है। लोग सोचते हैं कि जो भी मोटे लोग हैं ओबेस हैं, अब वो डरने लगे कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर वो नहीं खाते हैं तो वेट तो कम होता है, लेकिन वो जिस दिन खाएंगे उस दिन जैसे पहले थे वो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर भोजन नहीं कर रहे हैं तो फैट जो सेल है उसकी साइज है उसकी थोड़ी सी वो श्रिंक हो जाती है हल्के से, बट आफ्टर दैट हम फिर से अगर खाते हैं तो फैट तो वैसे ही है, वो फिर से बढ़ जाता है। तो खान पान में हम लोग परहेज ना करें कुछ भी, जैसे हम बचपन में खेलते थे, मम्मी 4 बार खिलाती थी, हम उस समय मोटे नहीं थे 12th क्लास तक, बट अब हमारे पास क्या हो गया, हम एक ही टाइम में खाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, ब्रेकफास्ट तो छोड़ ही देते हैं, मोस्टली ब्रेकफास्ट सभी लोग छोड़ते हैं, लंच में ऐसा टाइम कभी मिल गया तो खा लिए, वो भी लंच का टाइम कोई डिसाइडेड नहीं है, कोई 4 बजे खाता है, कोई 5 बजे, या कोई 12 बजे ही लंच मान लेता है, तो वो भी डिफेक्ट है। और फाइनली जो मोस्ट जो ओबेस पेशेंट है वो इसलिए सफ़र है क्योंकि वो सुबह भी नहीं खा पाए, दोपहर में भी नहीं खा पाए, फिर वो नाइट में जब आते हैं घर तो घर में अच्छा भोजन उनको मिलती है डेफिनेटली, वो देखते हैं कि भाई खाना अच्छा है और ये भी सोचते हैं कि अरे मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तो कुछ भी नहीं खाया, चलो अब खाता हूँ, और वो नाइट में अच्छा डोज ले लेता है जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक है, फिर वो जल्दी जल्दी फिर फैट उसका बढ़ते ही रहता है।
तो सही तरीका क्या है?
हमको 3 डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है वो हमको हैवी करना चाहिए, और उसके बाद जो लंच है उससे थोड़ा और कम, और नाइट का खाना तो हमको बिल्कुल कम ही करना चाहिए, और खाना हमें 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है आज के जमाने पे। तो ये है कि अगर नाइट का खाना खाना है तो थोड़ा सा हल्का, ज्यादा हैवी ना लें,
और इन 3 डाइट्स के बीच में ज्यादा कुछ चटर पटर ना खाएं।
चटर पटर खाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा खा सकते हो, ये नहीं कि जैसे अब हमें किसी के घर गए बड़ा बना हुआ है तो 2 की जगह हम 10 खा लेते हैं, तो ये हमारा एक
दो खाना अलाउड है,
2 खाइए 3 खाइए, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल, जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ अच्छा मिल गया व्यंजन, ऑयली आइटम मिल गया, टेस्टी तो रहता है लेकिन वो जल्दबाजी हम तो खाते जाते पता नहीं चलता, तो थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा अपने।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि हिंदू कल्चर में जो महिलाएं उपवास करती हैं उसका असर भी ऐसा होता है कि वो लॉन्ग पीरियड में मोटापे की ओर बढ़ता है, क्या ये सही है?
नहीं, ये एक मिथ्या वाली बात है, लेकिन ये है कि अगर हम 1 दिन उपवास हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो और हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम हम अपने पेट को रिलैक्स तो दे रहे हैं, ठीक है, जो वर्किंग हो रही है उसको रिलैक्स दे रहे हैं, बट अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं 1 से लेकर 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगर इसको मैं उपवास या दूसरे वे पे लेके जाऊं कि वेट लूज करना है और 4 दिन तक ना खाऊं, तो वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है।
नहीं तो हफ्ते में कई बार कई महिलाएं अलग अलग 3-4 उपवास कर रही हैं, निर्जला कर रही हैं, तो वो कितना सही है?
निर्जला करने से थोड़ा सा परेशानी तो आती है, आपको पानी तो पीना ही चाहिए, और जितना ज्यादा आप पानी पियेंगे शरीर के लिए उतना ही अच्छा है, तो फैट भी कम आपके शरीर पे जमेगा, मोटापा भी उससे कम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं पानी भी नहीं पीते आजकल।
मोटापे के कारण बच्चों और लोगों में आत्मविश्वास की कमी, चिंता, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, अकेलापन, डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, स्लीप एपेनिया, अस्थमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी, कब्ज, लीवर पर फैट्स जमना, फ्लैट फीट इत्यादि बीमारियां प्रमुख रूप से उभर कर आ रही हैं। मोटापे का ठोस कारण है कैलोरी में बढ़ोतरी, तैलीय खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, हर समय कुछ न कुछ खाते रहना और शारीरिक निष्क्रियता, ऐसे में इन चीजों की कमी करना आवश्यक है। हालांकि पुरानी आदतों की वजह से मोटापे पर काबू पाना आसान नहीं है, मोटापे से निजात पाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, ऐसे में मोटापे से निपटने के लिए भोजन और व्यायाम संबंधी आदतों में बड़े बदलाव की जरूरत है।
अभी तक हमने बात की डाइट से मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके अलावा एक्सरसाइज से?
हाँ, एक्सरसाइज तो जरूर एक हमें पार्ट बनाना चाहिए अपने लाइफ का, उससे क्या होगा जो हमारा तनाव है वो भी थोड़ा कम होगा, बॉडी में टोनिसिटी मेंटेन होगी, जितने मसल्स है, क्योंकि हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा बॉडी एकदम लूज हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं है, और फैट बढ़नी है, तो इसलिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, जो भी पॉसिबल हो, चाहे हम वॉकिंग करें या फिर रनिंग करें, या फिर अगर जिम के लिए टाइम मिलता है तो आप जिम भी कर सकते हो, बट ओवर बर्डन जिम में नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जिम कंटिन्यू कर नहीं पाते, और जैसे जिम छोड़ते हैं तो उसके बाद फिर से हमारा रिगेन होगा और ओबेसिटी बढ़ेगी।
ये कहा जाता है कि कोई अगर डांस करता है, डांस करना छोड़ देता है, तो उसके बाद उसमें मोटापा बढ़ जाता है, ये कितना सही है?
ये उतना सही नहीं है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली एरोबिक कर रहे हैं, एरोबिक डांस एक पर्टिकुलर एरियाज के लिए करते हैं, कि मेरे को एब्डोमेन का कम करना है या थाई का कम करना है, उसमें बहुत सारे फैट्स का स्टेप्स होते हैं, अगर वो सब स्टेप्स हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ, और उसके बाद जो हमारा टारगेट था स्लिम होना था वो हो गया, उसके बाद अगर छोड़ते हैं तो फिर वही ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिर हम एक्सरसाइज बिल्कुल सडनली बंद करते हैं, और जो हमारा डाइट है उसमें ध्यान बिल्कुल नहीं देते, अब ऐसा लगता है कि हम 6 महीने बहुत मेहनत किए हैं, अब थोड़ा खाने का दिन है, थोड़ा थोड़ा खाते ही रहते हैं, और फिर वो डाइट हमारा इम्बेलेंस हो जाता है।
तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि बच्चे मोटापे से खास तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं भी बढ़ रही हैं। WHO का मानना है कि समाज में तेजी से आ रहे बदलाव के कारण बचपन में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है।
अच्छा, छोटे बच्चों में भी आजकल बहुत मोटापा देखने को मिलता है, उसका क्या कारण है?
उसका मेन तो कारण है न्यूट्रिशन का। बच्चे आजकल बिल्कुल ना तो माँ बाप का बात मानते हैं ना किसी का, उनको जो अच्छा लगता वही खाते हैं। दाल भात रोटी सब्जी अगर उनको दो तो बोलेंगे ये कचड़ा है। बहुत से बच्चे बोलते हैं अरे इसको कौन खाएगा, खाते ही नहीं है। उनको चाहिए वेस्टर्न कल्चर के सारे फूड्स, उनको दे दो जंक फूड, दे दो बर्गर, दे दो पिज्जा, दे दो, वो बिल्कुल आपसे दिन भर कुछ मांगेंगे ही नहीं। और दूध तो आजकल बच्चे कोई पीते ही नहीं है, तो विटामिन डी के वजह से भी मोस्टली होते रहता है।
बच्चों में मोटापा बढ़ने का सीधा संबंध खान पान में स्वास्थ्य वर्धक भोजन की कमी और शारीरिक गतिविधियों के स्तर में कमी आना है, लेकिन इसका प्रभाव अन्य गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। इन आंकड़ों और तथ्यों से साबित हो चुका है कि मोटापा सचमुच देश के लिए और समाज के लिए आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकता है। इसको रोकने के लिए लोगों को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर व्यायाम और शारीरिक सक्रियता को अपने जीवन में शामिल करना बेहद जरूरी है।
चलिए, बच्चों में तो समझ नहीं होती है और वहाँ पर माँ बाप को कंट्रोल करना जरूरी होता है, लेकिन तीन एज तक आते आते तो लोगों में समझ आ जाती है बच्चों में। उस एज में भी मोटापा काफी हद तक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
उसकी तो अगर बात करें तो इरेगुलरिटीज है ड्यू टू स्ट्रेस। बच्चे जैसे टीनेजर से थोड़ा क्रॉस करते हैं, उनको इतना सारा टेंशन रहता है कि मुझे जॉब करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, वो नॉर्मल से एक स्ट्रेस जैसी बॉडी पे आता है तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी बढ़ती है। देन थिंग मैंने बोला कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डाइट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप बढ़ भी गए हो तो अगर आप डाइट कंट्रोल करके आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। और जो डेली रूटीन लाइफ, पहले हम सुबह हमारे माँ बाप उठा देते थे 5 बजे उठो पढ़ाई करो, आजकल हम 8 बजे 9 बजे के बाद उठ रहे हैं। और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके वजह से भी बहुत इफेक्ट है। आपने देखा होगा कि शिमला मनाली और हमारा इधर बिलासपुर कंपेयर कर लीजिए, तो जहाँ ठंडी है वहाँ पर फैट कम है, ओबेस कम है, और जहाँ टेम्परेचर मेंटेन है, मतलब नॉर्मल सिटीज की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पर ओबेसिटी बढ़ते जा रही है। तो मेन तो है कि आपका टेम्परेचर और इन्वायरमेंट भी बहुत इफेक्टिव है।
प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में मोटापा पूरी दुनिया में सबसे अधिक है और वहाँ BMI का औसत 34 से 35 के बीच है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और उपसहारीय अफ्रीकी देशों की तुलना में 70% से अधिक है, लेकिन शेष दुनिया में मोटापे का संबंध आय से रहा है और अधिक आय वाले देशों में मोटापा अधिक बढ़ रहा है। बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में महिलाओं के BMI में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि इटली और स्विट्जरलैंड में पुरुषों के BMI में मामूली सी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
महिलाओं और पुरुषों में भी ओबेसिटी अलग अलग तरह की होती है क्या?
महिलाओं का और पुरुषों का जो फैट जमने का जगह है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। पुरुषों का मोस्टली अगर देखा जाए तो टमी निकलता है, पेट ज्यादा बाहर आ जाता है। हर पत्नी पति से कहती है अपना पेट अंदर करो, नॉर्मली आपने सुना ही होगा। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा पेट नहीं निकलता, लेकिन उनका जो फैट सबसे ज्यादा थाई पे रहता है, बैक पे रहता है, बटक पे रहता है, देन फ्लैंक पे रहता है। तो इफेक्टेड महिलाएं सबसे ज्यादा इसी एरिया पे उनको फैट एक्युमुलेशन होता है।
इससे बचने के लिए इन लोगों को क्या करना चाहिए?
अगर रेगुलर डाइट कर रहे हैं तो डाइट से भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम सिर्फ एब्डोमन एरिया का कम कर सकते हैं या फिर हम फ्लैंक का कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सरसाइज कंपलसरी है। जैसे हम फिजियोथेरेपी कराते हैं तो सबका अलग अलग एक्सरसाइज है, कौन से मसल्स के पास ज्यादा फैट है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्ट्रेच कर उस पर्टिकुलर एरिया का जो फैट है वो कम कर सकते हैं। एक विशेष बात और कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है तो आप जो नॉर्मल टेप होता है आप उससे नाप के देख लीजिए। हम उसको बोलते हैं नॉर्मली सेंट्रल सर्कमफेरेंस, इट मीन्स जो हमारा बैक से लेकर जो पेट का पोर्शन है उसको हम टेप से नापते हैं। तो महिलाओं के लिए अगर 80 सेंटीमीटर है तब तो ठीक है, अगर 80 से ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब आपको ओबेसिटी या जो फैट है आपके बॉडी में धीरे धीरे आ रहा है। और पुरुषों के लिए लगभग 95 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, 95 से अगर ज़्यादा जा रहा है तो आप समझिए कि आपको ओबेसिटी शुरुआत हो चुकी है।
वर्ष 1980 से 2008 के बीच अमीर देशों में सबसे अधिक BMI अमरीका में बढ़ा। इसके बाद महिलाओं में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, जबकि पुरुषों के मोटापे के मामले अमेरिका के बाद सबसे अधिक ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले। पश्चिम यूरोप के कुछ देशों में लोगों ने अपने बीएमआई का स्तर यथावत बनाए रखने में सफलता पाई है।
विदेशों में मोटापा कम करने के लिए सर्जरी की जाती है
जी जी।
और हम यहाँ पे आपका ब्रोशर देख रहे हैं, उसमें आपने लिखा है नो नीडल्स, नो सर्जरी, नो डाउन टाइम, नो डाइट, नो एक्सरसाइज। तो उपचार का तरीका क्या है यहाँ पर?
देखिए, उपचार के तरीके बहुत है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी पैथीज है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम ओबेसिटी और जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में वो कम कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सिम्स बिलासपुर में, मैं एक एनजीओ के थ्रू एक रीशेप क्लिनिक में पार्ट टाइम कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, जो एक्स्ट्रा फैट है उस पर्टिकुलर एरिया पे ट्रीट करता हूँ। और फैट एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि बटर, अगर उसको फ्रिज पे रखते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, देन फिर उसको अगर निकालते हैं टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती है। तो सेम थिंग हमारा फैट सेल भी है, अगर आप फैट को हीट करेंगे और अगर कूल करेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। अगर यही प्रोसेस कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आ जाए कि हम एक साथ हीटिंग भी दे दें और कूलिंग भी दे दें और बिलो 0 डिग्री अगर टेम्परेचर ले जाए तो पर्टिकुलर एरिया का जो फैट है वो डेफिनेटली खत्म हो ही जाता है। ये जस्ट अभी अभी नया FDA अप्रूवल, इसका रिसर्च 2012 में कंप्लीट हो गया था बट अभी इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा हम लाइपोसक्शन करते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, जो नॉट पॉसिबल कि बहुत हैवीएस्ट फैट है, एक्सट्रीमली ओबेसिटी मैंने बोला जो ग्रेटर देन 40 BMI आ रहा है, तो उनके लिए हम वो लाइपोसक्शन देन बेरियाट्रिक सर्जरी करा सकते हैं।
ये क्या होता है?
लाइपोसक्शन में एक लेजर ट्रीटमेंट होती है, इंटरनल वे एक नेडल डालकर वो पूरा जो भी फैट है वो शक करके निकाल देते हैं। और बेरियाट्रिक सर्जरी में भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जो हम डायरेक्टली डिजॉल्व करके बाहर निकाल सकते हैं। बट इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि सर्जरी से सभी डरते हैं कि अगर पेट में हम इंसीजर लगाएं फिर क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, बाई चांस कहीं मिस्टेक हो गया, लीवर है साइड में, स्टमक है, किडनी है, अगर बाई चांस कुछ होता है, इंटेस्टाइन है, तब इसकी जवाबदारी कौन ले। लेकिन डॉक्टर्स हमारे इतने एक्सपर्ट हैं कि अभी तक ऐसा किसी को प्रॉब्लम नहीं आया, वो रेयर केस 1% रहता है सभी में कॉमन, बट हम अगर बहुत हाईली ओबेस हैं तो बेरियाट्रिक सर्जरी और लाइपोसक्शन करा सकते हैं।
मोटापा घटाने के उपाय: तला खाना कम खाएं, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, रेशायुक्त खाद्य पदार्थ का सेवन अधिक से अधिक करें जैसे अनाज, चना और अंकुरित चना, शरीर के वजन को संतुलित रखने के लिए रोजाना कसरत करें, धीरे परंतु लगातार वजन को कम करें, ज्यादा उपवास से शरीर को नुकसान हो सकता है, शारीरिक क्षमता को संतुलित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, थोड़े थोड़े अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, भोजन में चीनी, चर्बी युक्त खाद्य पदार्थ और अल्कोहल कम लें, कम चर्बी वाले दूध का सेवन करें।
हमारे यहाँ कितने % लोग इंडिया में ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, कुछ ऐसा आंकड़े हैं उसके?
अगर देखा जाए आंकड़े के हिसाब से तो मोर देन 85% लोग ओबेस हो चुके हैं और हो रहे हैं, और इसकी वजह से ओबेसिटी की वजह से जो 90% एवब हो चुका है आपका डायबिटीज, मोस्टली ओबेस जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो ओबेसिटी की वजह से ही सबसे ज़्यादा होता है। थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, ये सारी बहुत सारी बीमारियां जो है ओबेसिटी की वजह से आती है। तो अगर हम जड़ को खत्म कर दें तो सारी बीमारियां भी हमारी खत्म हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, अरे मैं तो ओबेस हो गया, मैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा हूँ, मैं आज और बढ़ गया, कल और बढ़ गया, और धीरे धीरे वो इतना टेंशन में आ जाता है तो स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी बढ़ ही रही है।
ओबेसिटी और सुस्ती में कितना रिलेशन है? लेकिन बहुत सारे मोटे लोग जो हैं वो बहुत एक्टिव भी दिखाई देते हैं।
ये तो डिपेंड करता है उनका इम्यून सिस्टम, जो हमारा पूरा बॉडी को लेकर चलता है। इम्यूनिटी अगर आपका अच्छा है तो आप कितने भी ओबेस हो, आपका मेटाबॉलिक काम कर ही रहा है, ठीक है, जो हमारा टॉक्सिसिटी बॉडी में क्रिएट होता है उसको निकालने का जो काम होता है वो इम्यून सिस्टम का होता है, वो सब अच्छा मेंटेन है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और सुस्ती डेफिनेटली ये है कि हमारा जो शरीर है एक नॉर्मल मसल्स के लिए, हड्डी के लिए, टिश्यूज के लिए, इसके लिए काम कर रहा है। अब हम जबरदस्ती ये जो गलत काम है या गलत आदत की वजह से जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट किया है, गेन किया है, उसके वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल बॉडी काम कर रही थी अब उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फैट है वो भी आपके बॉडी का ही पार्ट है, उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी ब्लड चाहिए, उसको भी आपको फूड चाहिए ही चाहिए अगर बॉडी में है तो इसलिए वजह से डिवाइड हो जाती है हमारी सारी एनर्जी, कुछ को फैट को चला जाता है, कुछ और, इसलिए हमें थोड़ी सुस्ती महसूस होती है।
आपके इस ब्रोशर में मुझे एक चीज और पढ़ने मिली, मोटापा नहीं फैट या चर्बी को कम कीजिए, तो ये मोटापा और चर्बी में क्या फर्क है?
बिल्कुल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारा वजन बढ़ गया कर हम बिल्कुल डाइट करने लग जाते हैं और खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऑब्वियसली होगा कि अगर आप डाइट रख रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो आपका वजन कम हो सकता है। नो डाउट आपका वजन कम हो जाएगा। आप मान लीजिए 70 के हैं तो आपका 65 हो सकता है, 5 किलो आपने वेट कम कर लिया। लेकिन मैंने वही बोला कि फैट सेल जो होते हैं वो फैट डिस्ट्रॉय नहीं होता, जब तक आप उसको एक्सरसाइज कर बर्न नहीं करेंगे तब तक वो फैट आपके बॉडी में रहेगा ही, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए तभी तो वो एक्सेस में हमारे बॉडी में पड़ा हुआ है। तो या तो उसको बर्न करना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जो पर्टिकुलर फैट सेल को डिस्ट्रॉय करे, वो ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए।
वो ट्रीटमेंट्स क्या है, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं?
ये अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, क्रायोलाइपोलाइसिस। क्रायोलाइपोलाइसिस में कूलिंग इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट दोनों एक साथ दिया जाता है एक पर्टिकुलर फैट पे। जैसे कि मेरा मान लीजिए एब्डोमेन में फैट है, तो एक हम तरीके से उसको क्लिपर्स होते हैं उसमें अपन मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद देखा जाएगा कितना mm है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करेंगे कि -5 डिग्री रखना है और जो हाई टेम्परेचर को 43 या 45 डिग्री रखना है और कितने समय के लिए देना है। तो वो पर्टिकुलर एरिया का ट्रीट हम कर रहे हैं तो वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का 20-30% फैट एक सिंगल सिटिंग में खत्म हो जाता है।
हमारे श्रोताओं से और कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे?
मैं सभी श्रोताओं को संदेश देना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहना है, स्वस्थ ही हमारा जीवन है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तब हम कमा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने डाइट पे बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए, खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज ना करिए। आप खाइए, 4 बार खाइए 5 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए। ये नहीं कि एक साथ हम जब मौका मिले तो एक ही साथ खाते हैं नाइट में, वो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए।
हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से जरूर सीख लेंगे और अपने शरीर के मोटापे के साथ साथ अतिरिक्त चर्बी को हटाने का जरूर प्रयास करेंगे। और बस आज के कार्यक्रम से अब हमको दीजिए इजाजत, सभी श्रोताओं को संज्ञा
और अनुज का
नमस्कार। सुनते रहे अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।